ऑफिस आवर्स खत्म होने के बाद शिवी वापस अपने घर के लिए निकल रही थी। उसका दिन काफी बेहतर था। पूरे दिन में उसकी एक बार भी आर्य सिंह ओब्रॉय से मुलाकात नहीं हुई थी। वो ध्वनि और अपनी टीम से मिलकर काफी खुश थी। पहले ही दिन उन लोगों से उसकी अच्छी खासी जान पहचान बन गई थी। शिवी घर पहुंची तब कोई नहीं था। उसने आकर चेंज किया और अपने लिए चाय बनाई। देखा जाए तो आर्य सिंह ओब्रॉय की कंपनी में काम करने वाले लोग काफी अच्छे हैं, सिवाय उस आर्य सिंह ओब्रॉय और उसकी पर्सनल असिस्टेंट जेनी को छोड़कर। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, मेड फॉर ईच अदर। शिवी अपने आज के दिन के बारे में सोच रही थी, तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। उसके पास सिद्धांत का कॉल आया था। सिद्धांत का नाम देखते ही उसे याद आया कि उसे इंडिया भी जाना था। शिवी के कॉल उठाते ही सिद्धांत ने कहा, ज्यादा घुमा फिरा कर बातें नहीं करूंगा। आई होप कि तुमने वो जॉब छोड़ दी होगी। जैसा तुमने कल रात को कहा था वैसा ही हुआ होगा। उस कंपनी के बॉस ने तुम्हें देखने के बाद तुम्हें निकाल दिया है ना? सिद्धांत की बात सुनकर शिवी का चेहरा उतर गया। उसने जवाब में कहा, नहीं सिट, जैसा मैंने सोचा था सब कुछ उसका उल्टा हुआ। इनफैक्ट मेरी तो आर्य सिंह ओब्रॉय से मुलाकात तक नहीं हुई। तो क्या उसे पहले ही पता चल गया कि प्लेसमेंट के लिए तुम आने वाली हो, और उसने तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हें कॉल करके वहां न आने के लिए कहा? सिद्धांत ने अंदाजा लगाते हुए कहा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। मैं कंपनी में उसके बजाय उसके पार्टनर से मिली थी। आज उसका मूड खराब था, इस वजह से मेरा वेलकम उसी ने किया था। सब कुछ काफी अच्छा रहा। मैं सब कुछ अच्छा या बुरा होने के बारे में बात नहीं कर रहा शिवी, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने वो जॉब छोड़ी या नहीं, सिद्धांत ने झुंझलाकर कहा। मैं ऐसा कर ही नहीं पाई और ना ही कर सकती हूँ। आई नो मेरा इंडिया आना जरूरी है, पर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैंने अपनी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो मुझे 50,000 पाउंड उसे कंपनसेशन के तौर पर देने होंगे। शिवी की बात सुनकर सिद्धांत ने सिर पकड़ लिया। उसने परेशान स्वर में कहा, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। तुम्हें सब कुछ सोच समझ कर करना चाहिए था। इतनी क्रूशियल सिचुएशन में तुम बेवकूफी कैसे कर सकती हो? सिद्धांत को शिवी पर गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया। कौन से मैंने सब कुछ जानबूझकर किया था यार, जो तुम मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। मैं इंडिया आना मैनेज कर लूंगी। उसके गुस्सा करने पर शिवी भी चिढ़ गई। अच्छा, तुम कर लोगी? क्या सब कुछ हवा में हो जाएगा? तुमने वो जॉब ज्वाइन कर ली है, अब तुम इंडिया कैसे आ पाओगी? MBA के बाद मैं इंडिया में ही सेटल होना चाहती थी, लेकिन अब मेरा सपना टूट गया है। भले ही हमेशा के लिए ना सही, पर पापा के लिए थोड़े दिनों के लिए तो आ ही सकती हूँ। मैं कल ध्वनि मैम से छुट्टी की बात करूंगी। मैं उन्हें सब बताऊंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो मुझे छुट्टी दे देंगी। मैं पापा की हियरिंग के दिन तक वहां पहुंच जाऊंगी। अब प्लीज मुझ पर चिल्लाकर मेरा मूड खराब मत करो। ऐसे ही सब गड़बड़ होने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। मैं तुमसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। शिवी ने सिद्धांत के जवाब का इंतजार किए बिना ही कॉल कट कर दिया। फोन कट होते ही सिद्धांत ने अपना हाथ टेबल पर मारा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं पिछले एक साल से तुम्हारा इंडिया आने का वेट कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर इस केस को हाथ में लिया, और तुम हो कि आ ही नहीं रही। सोचा था तुम यहाँ आओगी तो तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मेरा ऐसा करने के बाद तुम्हारे लिए यहाँ चीजें आसान हो जाती। हम अंकल को जेल से निकलवा देते और साथ में एक अच्छी लाइफ स्पेंड करते। लेकिन नहीं, हमेशा दूसरों की भलाई करने के चक्कर में तुम खुद का नुकसान करवा लेती हो, एंड आई रियली हेट दिस। सिद्धांत ने गुस्से में अपने दिल का सारा गुबार बाहर निकाल दिया। वो परेशान बैठा था, तभी उसके पिता मिस्टर विकास शुक्ला वहां आए। उन्होंने अनजाने में सिद्धांत की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो ये वजह है कि तुम हमारी फर्म के खिलाफ जाकर उस क्रिमिनल को बचाना चाहते हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी सिट। उनके चेहरे पर नाराजगी के भाव थे। वो सिद्धांत के सामने लगी चेयर पर बैठ गए। मिस्टर अय्यर बेकसूर है और ये मैं साबित करके रहूंगा, सिद्धांत ने जवाब दिया। इस उम्र में प्यार के लिए जुनून होना अच्छा होता है। वो लड़की भी अच्छी है, मैं उससे मिला हूँ, और मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम है तो इस बात से, तुम उसे गलत तरीके से पाने की कोशिश कर रहे हो। उसके चक्कर में तुम उसके बाप को बचा रहे हो, जिसने एक लड़की को बेरहमी से मार दिया। उसने एक और इंसान को मारने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गया। मिस्टर शुक्ला ने अपनी नाराजगी रोकी। उनकी फैमिली में लगभग सभी सदस्य वकालत करते थे, इसलिए उन्होंने खुद की प्राइवेट फर्म खोल रखी थी। पूरे मुंबई शहर में उनकी फर्म काफी फेमस थी, क्योंकि वो जो भी केस लेते थे वो उसमें जीत हासिल करते थे, और साथ ही वो किसी झूठे या अपराधी व्यक्ति का केस नहीं लड़ते थे। उनके लिए सच्चाई की बहुत कीमत थी। शिवी के पापा का केस लड़ने के लिए उनके फर्म में से किसी ने हाँ नहीं की, लेकिन शिवी के लिए सिद्धांत ने उसके पापा का केस लिया। उसके ऐसा करने पर मिस्टर शुक्ला बहुत नाराज हुए। जानता हूँ मेरे ऐसे करने से आप सब नाराज हो, लेकिन मैं जिस दिन सबके सामने सच को साबित करूंगा उस दिन आपको मुझ पर गर्व होगा पापा। और हाँ, मैं फिर कहता हूं, मिस्टर शिवैयर बेगुनाह है। सिद्धांत ने अपनी बात कही और कोट उठाकर वहां से चला गया। उसके पापा मिस्टर शुक्ला अभी भी वहीं बैठे थे। अब कौन समझाए इस लड़के को, एक लड़की के चक्कर में इतनी बड़ी बेवकूफी करने जा रहा है। ये भूल गया है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा। अब तक मैंने हमेशा सच के लिए लड़ाई की है और इस बार भी लड़ रहा हूँ। देखता हूँ ये मेरे सामने कैसे जीत पाता है। मिस्टर शुक्ला और सिद्धांत एक दूसरे के ऑपोजिट केस लड़ रहे थे। जहां मिस्टर शुक्ला शिव के पिता शिवायर को गुनाहगार साबित करना चाहते थे, तो वहीं सिद्धांत शिवी के लिए उन्हें बेगुनाह साबित करने पर अड़ा था। एक नॉर्मल सा केस एक बाप बेटे के बीच की लड़ाई बन गया था। ऑफिस खत्म होने के बाद आर्या अपने दोनों सूटकेस के साथ एली के घर पहुंचा। हालांकि वो घर ऑफिस से काफी दूर था, फिर भी उसने रहने के लिए उस जगह को चुना। पिछली बार जब वो आया था, उसके बाद उसने अपने पीछे से इंटीरियर डिजाइनिंग टीम को वहां भेजा था, जिसने घर को काफी हद तक बदल दिया था। उसने एली के कमरे में कोई चेंज नहीं करवाया था। घर को देखने के बाद वो काफी इम्प्रेस हुआ। एली के कमरे के अलावा जो दूसरा कमरा था, उसे जिम एरिया में बदल दिया गया था। घर का हॉल छोटा सा था, फिर भी उसके एक कोने में डाइनिंग टेबल तो दूसरे कोने में उसके काम करने के लिए टेबल और बाकी जरूरी सामान रखा हुआ था। किचन को भी अपडेट कर दिया गया था। पीटर अंकल उस घर की रखवाली काफी समय से कर रहे थे। वो एली के एकमात्र रिश्तेदार थे। आर्या को वहां देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आपने यहां शिफ्ट करने का सोच तो लिया है, लेकिन ये जगह आपके लिए छोटी नहीं रहेगी, पीटर अंकल ने कहा। मेरे लिए ये घर मेरी पूरी दुनिया है, फिर ये छोटी कैसे हो सकती है, आर्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने अपने सूटकेस वहीं एक कोने में रख दिए और वहां लगी कुर्सी पर बैठ गया। आप मेरा सारा काम संभाल लेंगे ना? अगर आपको हेल्पिंग स्टाफ की जरूरत है तो मैं किसी को बोल देता हूँ, आर्या ने पूछा।
आपको इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं इस घर को पहले भी संभाल ही रहा था। सफाई के लिए मैं किसी को भेज दूंगा, गार्डन की देखरेख मैं करता ही हूँ, कपड़े और बर्तन के लिए मशीन लगी है तो वो, पीटर अंकल उसे काम के बारे में बता रहे थे। तभी आर्या बीच में बोल पड़ा, मेरा काम मैं खुद कर लूंगा। हाँ, मुझे रात का डिनर रेडी चाहिए, मैं डेजी के साथ भिजवा दूंगा, पीटर अंकल ने जवाब दिया। ठीक है, फिर हो गया, आपसे मेरा रूटीन छिपा नहीं है। एली के साथ मैंने इस घर में काफी टाइम बिताया है, तब भी आपने हमारी बहुत हेल्प की थी। सुबह का ब्रेकफास्ट मैं खुद बना लूंगा और सफाई के लिए आप किसी को मत भेजिएगा, मैं वैक्यूम क्लीनर से खुद ही कर लूंगा। मशीन ने हमारी लाइफ काफी आसान बना दी है, लेकिन आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं, पीटर ने आर्या को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना, अपना काम मैं खुद देख लूंगा, छोटा सा ही तो घर है और रहने वाला भी मैं अकेला इंसान, सब हो जाएगा। ठीक है, पीटर को आर्या की बात माननी ही पड़ी। वो वहां से डिनर लाने का बोलकर चला गया। उनके जाने के बाद आर्या ने घर को ठीक से देखा। वो उसकी जरूरत के हिसाब से काफी अच्छी तरह से सेट था। उसने अपना सामान वहां अलमारी में सेट किया। एली के कपड़े उसी अलमारी में एक तरफ करीने से रखे हुए थे। अपना घर छोड़कर उसे पहले बहुत बुरा महसूस हो रहा था, पर यहां आने के बाद वो बेहतर महसूस कर रहा था। रात के एक बज रहे थे। एक क्लब के अंदर ध्वनि किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन उस जगह वो किसी का इंतजार कर रही थी। वो उससे मिले बिना भी नहीं जाना चाहती थी। पूरे ढाई घंटे से उसका वेट कर रही हूँ, अब तक नहीं आया, बिजनेस मेरा है और बिजी वो रहता है, आने दो उसे, मैं बताती हूँ। इंतजार करने की वजह से ध्वनि के चेहरे पर हल्का गुस्सा था, वो काफी थकी हुई भी थी। उसका इंतजार करते हुए ध्वनि 15-20 मिनट और बैठी रही। जब वो नहीं आया तो ध्वनि उठकर बाहर आ गई। वो अपनी गाड़ी में बैठी रही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा और खींचकर अपने गले से लगा लिया। तुम्हें बहुत पाप लगने वाला है, लगभग 3 घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हें पता है ना मैं ऑफिस में कितना थक जाती हूँ, उसके बावजूद यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें तो मुझसे पहले आना चाहिए था। इतनी थकावट में भी ध्वनि की आवाज में एक अलग ही सुकून का भाव था। एम सो सॉरी, तुम जानती हो ना मेरे लेट आने का कारण, उसके गले लगे लगे ही उस लड़के ने सफाई दी। क्या तुमने मेरा काम कर दिया, मुझे पता है तुम बिजी रहती हो, तुम्हारे लिए मुश्किल भी रहा होगा, लेकिन फिर भी वो मेरी अच्छी दोस्त है। उसकी बात सुनकर ध्वनि उससे अलग हुई और कहा, जानती हूँ, अब से वो मेरी भी अच्छी दोस्त बनने वाली है, और हाँ डोंट वरी, अब तक तो मैंने सब संभाल दिया है और आगे भी सब संभालती रहूंगी, प्लीज उसे पता मत चलने देना कि मैंने तुम्हें, वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही ध्वनि ने कहा। चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, चलो अब उसकी बातें करना छोड़ते हैं, हम पूरे एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं, तुम्हारी फ्रेंड को तो मैं संभाल लूंगी, पर बदले में तुम्हें उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, टाइम टू टाइम मिलने आना होगा। और ध्वनि बोल रही थी तभी उसने उसके होठों पर हल्का सा किस किया। उसके ऐसा करने पर ध्वनि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, पहली किस चुका भी दी, मुझे शिवी से पहले ही मिल लेना चाहिए था, उसी के बहाने सही, लेकिन तुमने खुद से प्यार तो जताया, चलो लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं, गाड़ी मैं ड्राइव करूंगा, बोलते हुए उसने ध्वनि के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। जरूर मिस्टर ईशान, ध्वनि उसकी बगल में जाकर बैठ गई। ध्वनि के साथ मौजूद लड़का शिवी का फ्रेंड ईशान था। जब शिवी ऑफिस में थी तब उसने ही उसे मैसेज किया था। ईशान के कहने पर ही ध्वनि ने शिवी की मदद की थी। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए थे।